मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज 5 जुलाई 2016 है और आज के इस afis.com में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और मित्रों, इसी क्रम में मैं स्वागत करता हूं अपने उन 4 नौजवान साथियों का भी जिन्होंने एकेडमी की सितंबर अक्टूबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन साथियों के नाम हैं विक्रम वर्मा, आप अंबेडकर नगर से हैं, दीपक पांडे बालाघाट मध्य प्रदेश से हैं, सुखराम चौधरी जोधपुर राजस्थान से हैं और डॉक्टर धवल राव अहमदाबाद से हैं। तो विक्रम, दीपक, सुखराम और धवल, आप सभी साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, यहां मैं एक बात आप सबको स्पष्ट कर दूं कि कल मैंने इसी स्वागत क्रम में आपसे बताया था कि ये सितंबर अक्टूबर के बैच की आखिरी लिस्ट है जिनका मैं स्वागत कर रहा हूं। लेकिन मित्रों, इस बीच में जो सैटरडे संडे में भी कुछ रजिस्ट्रेशंस हुए, स्पेशली संडे को कुछ रजिस्ट्रेशंस हुए जिनके नाम मेरे पास सोमवार सुबह तक नहीं आए थे, तो ये वे नाम हैं जो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले ही रजिस्ट्रेशन करा चुके थे। इसलिए आप इसे बिल्कुल इस रूप में न लें कि रजिस्ट्रेशन क्लोज होने के बाद ये रजिस्ट्रेशंस हुए हैं, ये उससे पहले किए गए रजिस्ट्रेशंस हैं। तो इस प्रकार दोस्तों, इन 4 साथियों के नाम के स्वागत के बाद अब सितंबर अक्टूबर के बैच का स्वागत क्रम यहीं पर बिल्कुल समाप्त होता है, रुकता है। और जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि फरवरी से 5 मार्च तक का जो नेक्स्ट बैच होगा उसके लिए रजिस्ट्रेशंस ओपन हो चुके हैं, तो अब जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं उस बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब क्रम है बधाइयों का है। आज मुझे 4 स्टूडेंट्स को बधाई देने का मौका मिल रहा है, जिसमें पहले स्टूडेंट हैं गोविंद दुबे, जिन्होंने मध्य प्रदेश के पीएससी एग्जामिनेशन में 3rd रैंक हासिल की है। तो गोविंद, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हम सब की तरफ से, पूरे के पूरे मेरे प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की टीम की ओर से और मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से भी। मित्रों, गोविंद ने एक छोटा सा मेल भेजा है, वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। बहुत ही छोटा सा मेल है। रेस्पेक्टेड सर, आई गॉट 3rd रैंक इन MPPSC 2013 एंड सेलेक्टेड फॉर अ डिप्टी कलेक्टर। आई एम वेरी मच थैंकफुल फॉर द वेबसाइट कंटेंट एंड योर मोटिवेशन एंड गाइडेंस। ये उन्होंने लिखकर भेजा है। मित्रों, दूसरे दोस्त हैं अजय चौहान, जो हमारे सेकेंड बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। उन्होंने मेल के द्वारा सूचित किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पर उनका चयन हुआ है और ये क्लास में जो कुछ बताया गया उससे उनको बहुत अधिक मदद मिली रिटेन में भी और इंटरव्यू में भी। तो अजय चौहान, आपको भी बहुत बहुत इस सफलता के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तीसरे दोस्त हैं नीरज दुर्गापाल, जो उत्तराखंड से हैं। उन्होंने आरओ का प्री एग्जाम क्वालिफाई किया है, क्योंकि उन्होंने अब ये नहीं लिखा है कि आरओ क्या, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या होगा, इसलिए मैं बताने की स्थिति में नहीं हूं। अपने सफलता में उन्होंने डेली ऑडियो गाइडेंस को श्रेय दिया है। तो नीरज, आपको भी बहुत बहुत बधाई हम सब की ओर से और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं भी। और मित्रों, चौथे दोस्त हैं गौरव कुमार शुक्ल, जो हमारे 3rd बैच के स्टूडेंट भी रहे हैं। उनका सिलेक्शन सिद्धार्थनगर जिले में प्राइमरी स्कूल टीचर्स के पद पर हुआ है। तो गौरव, आपको भी इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाइयां और साथ ही आप इससे भी बेहतर सफलता हासिल करें, इसके लिए हम सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, अब एक छोटी सी सूचना है और वो सूचना ये है कि आपको मालूम है कि कल ईद है, गजटेड हॉलीडे है। तो गजटेड हॉलीडे के समय अवसर पर डेली ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स और करेंट कंटेंट जो दूसरी चीजें होती हैं वो आपको एज इट इज अवेलेबल होती रहेंगी। तो दोस्तों कल डेली ऑडियो गाइडेंस नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स मैं एडवांस में ही आप सबको, अपने सभी प्रिय श्रोताओं को और देशवासियों को ईद की बहुत बहुत पूर्व कह लीजिए कि मुबारकबाद देता हूं। भाईचारे का त्यौहार है, बहुत उत्सव और उमंग का त्यौहार है, और एक आध्यात्मिक प्रोसेस के बाद, एक तपस्या के बाद आप देखते हैं कि किस तरह से रमजान एक महीने का रोजा रखा जाता है, और उसके बाद उस रोजे का एक तरह से एक अंतिम दिवस ये होता है। अंतिम दिवस तो पहले हो चुका होता है, उस दिन रोजा तोड़ते हैं कह लीजिए, और यह हर्षोल्लास का मौका होता है। तो मित्रों इसके लिए बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद। फ्रेंड्स अब मैं आता हूं आज के लाइफ मैनेजमेंट पर। आज के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आज आपको एक छोटा सा हिस्सा पढ़कर सुनाता हूं जो मैंने एक अखबार से लिया है। लेटेस्ट अखबार में ही ये छपी थी खबर, खासकर दैनिक भास्कर में ये थी, मुझे अच्छा लगा। खासकर कल्पेश याग्निक जी का लिखा हुआ है, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे पढ़ा हो जो दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, लेकिन मित्रों का अंदाज बड़ा खूबसूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता भी हूं, हम लोगों की मुलाकातें हुई हैं, काफी उनसे बातें भी होती रहती हैं। इन्होंने ये लिखा है दोस्तों माइकल फेल्प्स पर। आपको शायद याद हो, आप जानते भी हो कि जो माइकल फेल्प्स हैं वो एक तरीके से फ्लाइंग फिश हैं, मतलब तैराकी में उन्होंने जो विश्व रिकॉर्ड अभी तक मेडल जीतने के, ओलंपिक मेडल जीतने के बनाए हैं, वो सच पूछिए तो लगता है कि न भूतो न भविष्यति, न तो पहले कभी ऐसा हुआ है, पहले तो हुआ ही नहीं है, और शायद भविष्य में भी ऐसा शायद ही हो। दोस्तों उन्होंने अभी तक टोटल ओलंपिक में टोटल 22 मेडल्स जीते हैं, और उसमें से 18 गोल्ड मेडल हैं। आप इमेजिन करके देखिए, 18 गोल्ड मेडल। और दोस्तों अब ये अपने 5वें ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको मालूम है कि अब नेक्स्ट, अभी जो ओलंपिक अगले महीने ही होने जा रहा है ब्राजील के रियो दे जनेरियो में। मित्रों जो फेल्प्स हैं उनके जो जीवन की कहानी है वो बड़ी विचित्र है, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेरित करने वाली भी है। तो उनका एक छोटा सा अंश जो उन्होंने लिखा है उनके बारे में, कल्पेश जी ने जो लिखा है उनके बारे में, वो आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, छोटा सा अंश, हालांकि यह है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आपको सिर्फ छोटा सा अंश पढ़कर सुनाता हूं। उसका टाइटल उन्होंने दिया है, उन्होंने 8 पॉइंट्स दिए हैं, 8 पॉइंट्स के आधार पर फेल्प्स की कहानी कही है, जिसमें मैं आपको पहला पॉइंट सुना रहा हूं, और वो उसका सब टाइटल उन्होंने दिया है, कोई भी बीमारी एक बड़ा अवसर है। इसे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। माइकल फेल्प्स के पिता एथलीट थे, माँ स्कूल टीचर। अमेरिका के बाल्टीमोर में जन्मे फेल्प्स को 5 साल की नन्ही उम्र में ही डरावनी सी बीमारी बता दी गई, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यह बीमारी का नाम था अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, और इस बीमारी में शरीर से इतनी ऊर्जा निकलती जाती है कि बच्चा आपे से बाहर हो जाता है। 2 बड़ी बहनें थीं, दोनों एथलीट। विटनी तो स्विमिंग पूल से बाहर ही न आती, उसने फेल्प्स को तैरने जाने को कहा। फेल्प्स को सिर पानी में डालने पर डूबने का भयंकर डर लगता था, इसलिए बचते रहे। एक दिन डॉक्टर ने कहा, तैरने से ऊर्जा खर्च होती है, तैरो। वहां के कोच ने कहा, सिर बचाना है तो पीठ के बल तैरो, मैं सिखाऊंगा बैक स्ट्रोक में, इसीलिए मास्टर हैं फेल्प्स। और फिर निष्कर्ष निकालते हैं, बीमारी तैरने का अवसर लेकर आई। उनके पैरों का आकार भी बीमारी कहा जाता, शरीर की तुलना में टांगें छोटी लगती, पैरों के पंजे चौड़े लगते, बाद में डबल जॉइंट अलग निकले, तैरने में सब बहुत बहुत और बहुत काम आए। मित्रों, आपने देखा कि किस तरीके से जो उनकी कमजोरियां थी, जो जन्मजात उनकी कमियां थी, किस तरीके से वही कमियां उनके लिए सबसे बड़ी ताकत और सफलता के सबसे बड़े उपकरण बन गए। और मित्रों, इसके बाद सातवां पॉइंट उसमें उन्होंने दिया है, सबसे बड़ा काम है काम करना। मैं समझता हूं कि यह शायद आप लोगों के सबसे ज्यादा काम की बात हो। फेल्प्स ने पतन से उत्थान का सरल उपाय निकाला, भयंकर मेहनत करो। उन्होंने काम में खुद को झोंक डाला, 7-7 घंटे तैराकी, ओ दिन है और आज का दिन है, 6 घंटे प्रतिदिन वर्कआउट। यही कारण है कि हम आज जिस फेल्प्स को देखते हैं उसकी कमर 32 इंच है, बाइसेप्स 15 इंच, 13 किलोमीटर प्रतिदिन तैरते हैं, इसीलिए 13,000 कैलोरी खाते हैं। दोस्तों, ये है फेल्प्स के बारे में लिखा गया छोटा सा अंश। मित्रों, मुझे नहीं लगता कि इसको किसी भी तरह के अब विश्लेषण की जरूरत है, आप सब इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है मित्रों कि सिर्फ समझने से बात नहीं बनती है, समझते तो हम बहुत सारी चीजें हैं, बात सही मायने में बनती है चीजों को महसूस करने से। पढ़ी हुई चीजों को जब आप संवेदना के स्तर पर ले जाते हैं तो याद रखिए कि न केवल उनके अर्थ ही बदल जाते हैं बल्कि सच पूछे तो उनके प्रभाव भी बदल जाते हैं। और मुझे तो ये लगता है मित्रों कि प्रभाव पड़ता ही तब है जब हम किसी भी चीज को संवेदना के स्तर पर ग्रहण करते हैं। और नो डाउट कि जब हम संवेदना के स्तर पर ग्रहण करते हैं तो चेतन तो रहते ही हैं, वो चेतना ही हमें संवेदना तक पहुंचाती है। तो मित्रों, आप कल्पना करके देखिए कि जो व्यक्ति आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा है और लोग एक एक मेडल, चाहे वो ब्रांज का ही क्यों न मिल जाए, ओलंपिक का पाने के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, वहां एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ओलंपिक में 22 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें से 22 टोटल मेडल जीते जिसमें से 18 गोल्ड है। सोच कर देखिए, तो ये जो एक आप देख रहे हैं कि कितना स्टैटिक है, उनके सक्सेस में कितना स्थायित्व है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं है कि बहुत 18 गोल्ड हैं, 22 में से सिर्फ 4 हैं, हमने मुझे नहीं मालूम कि उसमें से सिल्वर कितने और ब्रॉन्ज कितने हैं। तो मित्रों, ये कहीं ना कहीं आपके अंदरूनी ताकत से आती है, दिमाग की ताकत से आती है, जो आखिरी में जो बात कही गई कि उन्होंने अपने को काम में झोंक दिया। ओलंपिक तो 4 साल के बाद आता है, लेकिन आप देख रहे हैं कि डेली 6 घंटे वर्कआउट, 13 किलोमीटर प्रतिदिन चलना। इसका मतलब यह है कि अगर अभी कुछ नहीं खेल खेलना है, तैराकी नहीं करनी है, प्रतियोगिता में भाग नहीं लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी थम जाना है, रुक जाना है, जब समय आएगा तब आप करेंगे। हम क्या करते हैं मित्रों कि एग्जामिनेशन से 1-1.5-2 महीने पहले उसके बारे में सिंसियर होते हैं कि नहीं, अब पढ़ाई शुरू करना चाहिए, अब बहुत हो गया। साल भर तक क्यों नहीं हो सकती? जिस दिन आपने कोई प्रतियोगिता या कोई भी कंपटीशन में भाग लेने का फैसला किया है, पढ़ाई उसी क्षण से शुरू क्यों नहीं हो सकती? और अगर शुरू हो जाती है तो वो बीच में क्यों रुक जाती है? क्यों आप अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते हैं? दोस्तों, मुझे लगता है कि ये सब बातें, इस तरह की घटनाएं, क्योंकि ये तो इतिहास हम नहीं पढ़ रहे हैं, पता नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, ये तो हम अपने इतिहास को निर्मित होते हुए देख रहे हैं। इतिहास तो ये बाद में होगा, ये तो वर्तमान ही है, तो ये तो सच है, कम से कम इस पर तो हम भरोसा करके अपने लिए बहुत कुछ ऊर्जा यहां से हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में इतना ही। अब मैं आता हूं कल के IR न्यूज पर। फ्रेंड्स, 2 न्यूज मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट लगी, मैं थोड़ी सी की बात कर रहा हूं, दूसरी न्यूज तो खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। पहली न्यूज थी दोस्तों कि हमारे वित्त मंत्री जी का स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में उन्होंने, खासकर वो जब छत्तीसगढ़ में एक सम्मेलन हो रहा था और सरकार ने राष्ट्रीय खनिज नीति भी घोषित की है, वहां उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही। और वो बात उन्होंने, ये 2 इम्पॉर्टेंट बात कही मुझे लगता है। पहली बात तो ये है कि अब जो जितने भी हमारे यहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज की जो है नीलामी होगी, नीलामी होगी, ऑक्शन होगी। मित्रों, अगर आप डी राजा वाले केस को याद कर सकें, जो कांग्रेस के समय में हमारे मंत्री थे, और 2G स्पेक्ट्रम शब्द आपने सुना होगा, उस समय स्पेक्ट्रम का भी आवंटन किया गया था, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लोगों को स्पेक्ट्रम बेचा गया था। ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पर सरकार का अधिकार होता है। तो शुरू में प्रक्रिया नीलामी की ही थी कि नीलाम किया जाएगा, और नीलामी आप समझते हैं ऑक्शन, जो ज्यादा कीमत लगाएगा उसको दे दिया जाएगा। लेकिन डी राजा ने किया ये था कि उस पूरी की पूरी प्रक्रिया को अचानक बिना सिस्टम के बदल करके उन्होंने पहले आओ पहले पाओ के हिसाब पर दे दिया, कि यानी जो पहले अप्लाई करेगा उसको वो नीलामी, वो आवंटन पहले कर दिया जाएगा। वो केस आप लोगों को शायद मालूम होगा, तो स्वाभाविक है कि ऐसे में आप जिसको देना चाहते हैं उसको बोल दीजिए कि तुम पहले आ जाओ, और उसको दे दीजिए और कह देंगे कि तुम पहले पाओ। और यही उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने नीलामी की प्रक्रिया को अपने हित के लिए बदला और अपने लोगों को फायदा पहुंचाया। फिर वो कितना बड़ा केस हुआ, और आप देखते हैं कि उसमें फिर सीएजी की रिपोर्ट आई कि उसमें लाखों करोड़ रुपए का सरकार को नुकसान हुआ है। फिर उनको रिजाइन करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा, केस चल रहा है। कोयला खदानों के आवंटन में भी इसी तरह का मामला हुआ था कुछ दिनों के बाद ही, जिसको कोलगेट कांड के नाम से जाना गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो वो सारे के सारे आवंटन रद्द भी किए गए। ये सारा किस्सा आपको मालूम होगा। तो इसके पीछे जो कारण था, उस कारण जो मेन था मित्रों, वो ये था कि एक तो नीलामी के जरिए चीजें नहीं की गई, ऑक्शन। लेकिन उससे भी बड़ी बात मुझे ये लगती है दोस्तों कि वो जो नीलामी भी थी वो ई के माध्यम से नहीं की गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन, वो आपके इंटरनेट के माध्यम से नहीं की गई, मतलब हमने डिजिटल का सहारा नहीं लिया। अब देखिए होता क्या है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, तब आप इसकी प्रैक्टिकलिटी को समझ पाएंगे। हो सकता है कि आपको उस तरह का अनुभव नहीं हो। जैसे मान लीजिए कि सरकार को कुछ खदानों की नीलामी करनी है। अब नीलामी ही करनी है, नो डाउट कि नीलामी ही करनी है, तो सरकार के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि भाई या इस नीलामी में भाग लेने वाली कंपनीज का इतना वर्थ होना चाहिए, मतलब उनका टर्नओवर इतना होना चाहिए, इतनी साल पुरानी ये कंपनी होनी चाहिए, उसके इतने एसेट्स होने चाहिए। फिर सरकार नीलामी में ये भी फिक्स करती है कि जो लोग नीलामी में भाग लेंगे वो इतना पैसा मिनिमम थोड़ा सा रख देती है कि वो जमा कर सरकार के पास जमा करेंगे ना, ताकि उनकी एक उनका एक दायित्व भी बने। ये नहीं कि बोला और इसके बाद खिसक लिए तो फिर वो पैसा जब्त हो जाएगा, तो उसका एक परसेंटेज रख दिया जाता है कि वो 50 करोड़, 100 करोड़, 5 करोड़ रुपए सरकार के पास जमा करेंगे। इसके बाद फिर नीलामी होनी शुरू होती है और सरकार उसमें एक मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है। मान लीजिए कि उसे एक खदान की नीलामी करनी है तो वो कह देगी कि इसका जो मिनिमम रेट है वो है 100 करोड़ रुपए। तो अब आपको जो बोली लगानी होगी वो 100 करोड़ से ऊपर ही लगानी होगी, और अगर 100 करोड़ से ऊपर बोली नहीं लगी, यानी कि 100 करोड़ की भी बोली नहीं लगी, तो सरकार नीलामी को सस्पेंड कर देगी, फिर किसी को नहीं देगी। फिर सरकार उस पर सोचेगी कि क्या हमने इसका वैल्यूएशन ज्यादा कर लिया था, जो भी फिर उसके निष्कर्ष होंगे, फिर वो अगले टर्म में उसको चेंज करे, अगली बार उसको चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये एक सिस्टम है। तो नीलामी पब्लिक के सामने होती है, नीलामी में जो भाग लेने वाले लोग हैं वो सब आते हैं और वहां ऊंची आवाज में बोलते हैं, तो वहां फिर चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाती है, वहां फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक पेंच जो है मित्रों वो ये है कि अब ये जो नीलामी होनी है इसकी सूचना सभी कंपनियों को कैसे दी जाए। हो सकता है कि अगर मैं कुछ पार्टी में इंटरेस्टेड हूं, मतलब मान लीजिए, तो 2-4-5 लोगों को मैं कह दूंगा कि भैया नीलामी होनी है, और वो 2-5-4-5 आपस में मिलकर के और वो सारा उसकी सरकारी नियम जो होंगे उसकी खाना पूर्ति कर देंगे, नीलामी में आ जाएंगे और खरीद लेंगे। और जो दूसरे बड़े लोग हैं या जो वो भी इंटरेस्टेड थे वो इससे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमने उनको सूचना नहीं दी। हालांकि सरकार में ये नियम है कि आप उसकी सूचना दीजिए, अखबारों में छपवाइए, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी हो जाता है जो डी राजा के समय में हुआ। इसकी अपनी एक लिमिटेशन है। तो अब उसकी जगह क्या कर दिया, ई नीलामी। ई नीलामी का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि खनिज की नीलामी होनी है तो उसको खनिज मंत्रालय करेगा, ठीक है। तो खनिज मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर बकायदे इसकी सूचना डालेगा कि ऐसे ऐसे ये है, उसकी सारी सूचनाएं जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं वो सब उसमें डाल देगा। जैसे ही वो उसमें डलेगी तो अब वो पूरी दुनिया को पता लग गया क्योंकि मित्र जिनका भी माइनिंग का काम है, जो इस तरह का बिजनेस करते हैं, जो कंपनियां, वो तो बट नेचुरल है कि वो तो डेली इन सब चीजों को देखेंगी ही, क्योंकि वो तो उनका काम ही है। उनका एक ग्रुप है जो उन सब उसी कंपनी ने कुछ लोगों को लगा रखा है जो डेली दुनिया भर के जो इस तरह की चीजें हो रही हैं उनको देखती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब नीलामी का जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक हो जाएगा, अब वो कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। जब उसका क्षेत्र व्यापक हो जाएगा तो लोग ज्यादा से ज्यादा आएंगे, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के आने से दो फायदे होंगे। पहला तो यह, जैसे मान लीजिए कुछ ही लोगों को पता लगा, चार पांच लोगों को, तो वो आपस में ना एक गुटसा बना करके कहेंगे कि भैया ये 100 करोड़ का सरकार का प्रोजेक्ट है ना, तो इसको हमें 110 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं जाना है। तो फिक्स हो जाएगा कि भैया अच्छा तुम ले लेना 110 करोड़ रुपए में, और जो मान लीजिए चार और लोग होंगे तो उसको ये कंपनी वाला कह देगा कि तुम कुछ ले लो, तुमको 5-5 10-10 करोड़ रुपए में दे देता हूं। तो मान लो 10-10 करोड़ 40 करोड़ उसको दे दिया, 110 करोड़ रुपए सरकार को दे दिए, इस तरह से उसको मिला 150 करोड़ रुपए का, जबकि वो प्रोजेक्ट हो सकता था कि 500 करोड़ में बिके। अगर ओपन नीलामी होती तो वो 500 करोड़ में बिक सकता था, तो सरकार को तो मिले 110 करोड़ रुपए, जो भाग लेने आए थे उनको फालतू के 10-10 करोड़ रुपए मिल गए, और कंपनी को वो चीज मिल गई 150 करोड़ रुपए में। तो ये जो 350 करोड़ का नुकसान हुआ, ये किसको नुकसान हुआ? सरकार को नुकसान हुआ। सरकार को नुकसान होने का मतलब है ये पब्लिक को नुकसान हुआ। तो मित्रों, जब ई नीलामी के जरिए वो सूचना सभी लोगों तक पहुंच गई, तो बट नेचुरल है कि अब आप इतने बड़े लोग, इतने सारे लोग अलग अलग जगह पर बैठे हुए, आप कैसे आपस में समझौता करके कह देंगे कि भैया 110 करोड़ रुपए से ज्यादा हमें नहीं जाना है। पहली बात तो वो चीज खत्म होगी। दूसरी चीज क्या है कि एक बहुत ही वाइड रेंज में जब चीजें पहुंच जाती हैं तो फिर प्रतियोगिता बढ़ जाती है। सबके पास अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी रिक्वायरमेंट है खनिजों की, अपने एक्सपीरियंसेस हैं, तो उस आधार पर वो उसका मूल्यांकन करेंगे कि ये जो खदान है कितने वैल्यू की है, कितना प्रॉफिट हो सकता है, आगे चल करके क्या इसके कैलकुलेशंस होंगे। फिर उस प्रतियोगिता के कारण जो सरकार को रेवेन्यू मिलेगी, यानी कि जो उसकी नीलामी होगी वो कई गुना ज्यादा हो सकती है। तो इस तरीके से जो रेवेन्यू सरकार के पास है वो ज्यादा आएगा, तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं दोस्तों, जो एक तरीके से कह लीजिए कि जिनकी लूट मची हुई है, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो लूट बंद हो सकेगी, उन पर प्रतिबंध लग सकेगा। और नो डाउट कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहना चाहिए, उनका यूज होना ही है, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए कि उससे देश को लाभ, पर्याप्त लाभ मिल सके। तो जो अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने जो बात कही थी, तो उनका संकेत इसकी ओर था। पहला पॉइंट दोस्तों, मैंने इसको आपको बहुत बेसिक से इसलिए बताया है कि बाय द वे आपसे अगर सिविल सर्विस में इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई ई नीलामी के क्या प्रभाव पड़ेंगे, ये किस तरीके से जनता के भारत देश के लिए उपयोगी हो सकता है ना, तो आप अगर आपको बेसिक्स मालूम होंगे उसकी, तो स्वाभाविक है कि आप अपने आप को उसका उत्तर देने लायक कुछ ना कुछ बना लेंगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही दोस्तों, वो ये कही कि जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर जिले में, मान लीजिए कि एक जिला है बस्तर जिला है, और बस्तर जिले में लोहे की खदान है, और उस लोहे की खदान की नीलामी हो गई राइट, और उस नीलामी से सरकार को एक साल में 100 करोड़ रुपए मिल रहे हैं राइट। तो अभी तक का सिस्टम यह था कि अब वो सरकार को 100 करोड़ रुपए, मतलब मान लीजिए केंद्र सरकार को 100 करोड़ रुपए मिल गए, तो अब छत्तीसगढ़ सरकार उस 100 करोड़ रुपए का कहीं भी उपयोग करे, और हो सकता है कि उसमें से 100 रुपए का भी उपयोग वो बस्तर जिले के लिए ना करे, बाकी उसको दूसरे जिलों के लिए करे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई दूसरे जिलों को ज्यादा जरूरत है। जो नीति में इन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वित्त मंत्री जी ने, इसको आपको पकड़ना होगा मित्रों, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो ये है कि जो जिस जिले से राजस्व मिलेगा उसका एक हिस्सा खनिज वाले जिलों में ही खर्च किया जाएगा। क्योंकि देखिए जिस जिले में ये खदानें निकलती हैं वो जिला बहुत सफर करता है, सोच करके देखिए वहां कितना पॉल्यूशन हो जाता है, नो डाउट उनको फायदे भी होते हैं, रोजगार मिलता है, लेकिन वहां के प्राकृतिक रिसोर्स तो जा रहे हैं ना, तो कम से कम वहां के डेवलपमेंट के लिए, वहां के वेलफेयर के लिए उसका कुछ हिस्सा तो उसी जिलों में खर्च किया जाना चाहिए। और वैसे भी आप देखेंगे दोस्तों कि आजादी के बाद जब हमारे देश में राज्य बन गए, इसके बाद जो राज्यों के विभाजन हुए, आप देख रहे हैं राज्यों की विभाजन, मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड हो गया, बिहार इतना बड़ा था, बिहार और झारखंड हो गया। तो आप वैसे सोचेंगे तो लगेगा कि ये ज्योग्राफिकली चूंकि बहुत बड़े थे इसलिए इनको छोटा किया गया, लेकिन ये सब आंदोलन के कारण हुए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बिहार में उतना आंदोलन नहीं था, लेकिन और जो दूसरे हुए हैं वो आंदोलन के कारण हुए हैं, और आंदोलन इस बात को लेकर के था कि हमारे यहां इतना नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन हमारा डेवलपमेंट हो ही नहीं रहा है। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश का सिनेरियो लेंगे तो छत्तीसगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ था, जबकि सबसे ज्यादा रिसोर्सेज मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से मिलता था, छोटा सा हिस्सा है और मध्य प्रदेश का लगभग 30-35% जो रिसोर्स था वो छत्तीसगढ़ से आता था, लेकिन टोटल जो खर्च होता था छत्तीसगढ़ पर वो हार्डली 12-15% था। तो वो अनरेस्ट पैदा होता है। इसी तरह से आप बिहार में देखेंगे, झारखंड वाला एरिया नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है लेकिन डेवलपमेंट के लिहाज से वो बहुत पीछे है। तो जो चीज अभी हम राज्य के बारे में देख रहे हैं उसे अब और अगर आप थोड़े से मैक्रो लेवल पर चले जाएंगे, माइक्रो लेवल पर चले जाएंगे, तो आप जिले के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई उसी जिले पर खर्च कीजिए, कुछ तो खर्च कीजिए ताकि जिले का डेवलपमेंट हो, क्योंकि वो जिला आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। तो मित्रों ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगी, और चूंकि इस तरह की नीतियां जैसे ई नीलामी की बात है तो ये केवल खनिज के क्षेत्र में ही नहीं है, तो उन्होंने पूरे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कही है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और राजस्व के बारे में कही है कि वो खनिज वाले जिलों में ही वो किया जाए खर्च किया जाएगा। तो इन दोनों तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे, और मैंने उसकी जो बेसिक्स है मित्रों वो आपको बता दी है। दूसरी जो खबर थी फ्रेंड्स वो पीएम के टूर को लेकर के थी। आपने न्यूज में सुना कि हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ ही दिनों में अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा करने वाले हैं, और वो चार देशों में जाएंगे, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और केन्या। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले भी जब एक अफ्रीकी नागरिक की वहां दिल्ली में जब हत्या कर दी थी कुछ लोगों ने, तब पूरे अफ्रीका के देशों ने मिलकर के उसके प्रति एक विरोध व्यक्त किया था, लेकिन किसी भारत सरकार ने एक तरीके से उस स्थिति को संभाल लिया, क्योंकि दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है मैं पहले भी बता चुका हूं वो भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब एक सेंटर सा बन गया है, पूरी दुनिया उधर देख रही है क्योंकि उसके पास बहुत ही नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, लेबर भी वहां बहुत ज्यादा है। अभी चूंकि बहुत से देश तो अनडेवलप्ड हैं, कुछ डेवलपिंग है, डेवलप्ड तो बहुत ही कम है, तो ऐसी स्थिति में वहां डेवलपमेंट की भी गुंजाइश बहुत ज्यादा है। तो बट नेचरली कि ऐसी स्थिति में भारत के लिए जो दक्षिण अफ्रीका है उसका जो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ऐसा नहीं कि केवल भारत आज ही दक्षिण पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप से संपर्क बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि उसके आर्थिक हित हैं या थोड़े से डिप्लोमेटिक हित भी हैं, जैसे यूएनओ में अगर उसको समर्थन चाहिए तो देशों की संख्या चाहिए तो अफ्रीका में 54-55 देश हैं एक ही महाद्वीप में, तो ये एक अलग मुद्दा है। अदरवाइज आप देखेंगे कि फ्रीडम मूवमेंट से ले लीजिए तो हमेशा भारत अफ्रीकी देशों के फ्रीडम मूवमेंट में सहयोगी रहा है, उपनिवेशवाद का लगातार विरोधी रहा है, और दक्षिण अफ्रीका में तो गांधी जी ने अपने सत्याग्रह के पूरे प्रयोग ही किए थे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अफ्रीका के साथ भारत का बड़ा क्लोज लगाव रहा है। तो इस दृष्टि से दोस्तों ये जो विजिट होगी प्राइम मिनिस्टर की ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट विजिट होगी। 2013 में और 14 में आप देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप को लेकर के सीधे सीधे क्वेश्चंस भी मेंस में पूछे गए थे। तो आप अब अफ्रीका महाद्वीप पर आएंगे ही, आर्टिकल्स आएंगे, प्राइम मिनिस्टर के टूर्स पर आएंगे, उन पर समीक्षाएं आएंगी, तो बकायदे आप उन पर ध्यान रखेंगे, ध्यान देंगे। और जहां तक afis.com में चीजें प्रोवाइड किए जाने की बात है और डेली ऑडियो गाइडेंस में, तो वे चीजें शामिल होंगी ही, उस पर हम लोग बात लगातार करते रहेंगे। तो दोस्तों न्यू AIR न्यूज के बारे में बस इतना ही। अब मैं आता हूं प्रेस क्लिपिंग्स पर। आज मैं एक प्रेस क्लिपिंग्स का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा दोस्तों, और ये बिजनेस स्टैंडर्ड की प्रेस क्लिपिंग्स है जिसे लिखा है विजय जोशी जी ने, और इन्होंने एक किताब लिखी है इंडियाज लॉन्ग रोड द सर्च फॉर प्रॉस्पेरिटी जो अभी छपने वाली है, उसको बेस बना करके ये किताब आई है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, हालांकि ट्रांसलेटेड लैंग्वेज है, थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। इसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि भारत में गरीबी कैसे दूर की जा सकती है, तो भारत को किस तरह की आर्थिक नीतियां एडॉप्ट करनी चाहिए, तो आपको एक विजन मिलेगा, एक दृष्टिकोण मिलेगा, तो आप ये स्पेशली पढ़िएगा। दो क्लिपिंग्स एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के हैं, वो बहुत अच्छी क्लिपिंग्स हैं, उन्हें भी आपको पढ़ना चाहिए, और बाकी अदर क्लिपिंग्स आप देख लीजिएगा। मित्रों, अब मैं आता हूं ईमेल पर। सभी ईमेल लिखने वाले साथियों के प्रति बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। ओमराज अमीना जी ने लिखा है, जो जयपुर से हैं, कि वो डेली ऑडियो गाइडेंस के बारे में काफी लोगों को बताते हैं और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो ओमराज जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत अलग से धन्यवाद। तो मित्रों, कुछ और दोस्तों के नाम हैं। सुखराम चौधरी जोधपुर से हैं, इम्तियाज हुसैन बिहार से, शालिनी लखनऊ से, संदीप कुमार आप भी लखनऊ से, पंकज कुमार रांची से, गौरव वर्मा, सौरभ कुमार, सीमा कुमारी दिल्ली से, सूरज कुमार जटाले हिंगोली महाराष्ट्र से, सौरभ यादव कानपुर नगर से, अविनाश वर्मा पश्चिमी चंपारण बिहार से, और शाबाद कुरैशी न्यू दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही आज का यह डेली ऑडियो गाइडेंस यहीं समाप्त होता है। इजाजत चाहूंगा, एक दिन के गैप के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।